आनंद। इस फिल्म में बहुत सारी खास बातें हैं। पहली बार गुलजार साहब एज अ राइटर उभरे और उन्होंने इस फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना ने एक साथ काम किया था और अमिताभ के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक था। इस फिल्म की एक और खास बात यह है कि इस फिल्म में पहली बार अमिताभ बच्चन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिल्म आनंद की शुरुआत में हम देखते हैं डॉक्टर भास्कर बनर्जी स्टेज पर खड़े हैं और वो अपने एक किताब का उद्घाटन करने वाले हैं और उस किताब का नाम रखा है उन्होंने आनंद।
माननीय सभापति महोदय, माननीय साहित्यिक साथियों, डॉक्टर भास्कर बनर्जी, डॉक्टर कुलकर्णी और उपस्थित सज्जनों, सरस्वती पुरस्कार हर साल साहित्य की सबसे महान रचना को दिया जाता है। इस साल इस पुरस्कार की विशेषता यही है कि ये लेखक की पहली रचना है और इसके लेखक हैं एक डॉक्टर, डॉक्टर भास्कर बनर्जी। वो एक बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। ऐसे वातावरण में रहकर आनंद जैसे चरित्र की रचना करना सचमुच बहुत आश्चर्य की बात है। पुरस्कार वितरण से पहले मैं डॉक्टर बनर्जी से प्रार्थना करूंगा कि वो हमें अपने उपन्यास के बारे में कुछ बताएं। इसे लिखने की प्रेरणा उन्हें कहां से और कैसे मिली?
मैं माफ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता और सच पूछिए तो मैं कोई लेखक भी नहीं। लिखने की जो थोड़ी बहुत आदत है वो सिर्फ डायरी तक, और जिसे आप मेरी कहानी या नॉवल समझ रहे हैं वो मेरी डायरी के ही कुछ पन्ने हैं। जिन दिनों मैं आनंद से मिला मेरी दिमागी हालत अच्छी नहीं थी। मैं डॉक्टरी पेशे से बहुत निराश हो चुका था। हर तरह के दुख, बीमारी, गरीबी देख देख कर मेरे सारे हौसले टूट चुके थे। मैं बेबस हो चुका था।
आनंद कहानी दोस्ती की कहानी है। एक सीरियस और एक हंसते हुए जिंदा दिल आदमी के बीच में किस तरह से दोस्ती पैदा होती है और ये कहां जाकर खत्म होती है। दोस्ती इंसान का सहारा है, ये वो एहसास है जो सिर्फ हमारा है। सारे गम बांट लेते हैं, साथ निभाते हैं। दोस्त वो हैं जिन्हें हम रिश्तों से नहीं दिल से अपना बनाते हैं। पहली बार डॉक्टर भास्कर बनर्जी की आनंद से मुलाकात होती है तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसा अजूबा है, कैसा इंसान है जिसे पता है कि वो मरने वाला है मगर वो इतना खुश कैसे हो सकता है।
सर, दिल्ली से कोई आनंद सहगल आए हैं।
आनंद दिल्ली से? वो तो कल आने वाला था। बुलाओ उसे, बुलाओ।
हेलो दोस्त, आओ आनंद आओ। अरे कहा था ना फिर मिलेंगे, मिल गए ना,
बैठो।
अरे हाँ, तुम्हें बीच में तुम्हारी शादी होगी?
हाँ।
अभी कैसी है?
बहुत अच्छी है।
जूनियर सिंगर?
हाँ,
अभी तक दो ही है।
क्या यार, तीन साल शादी को हो गए, एक कंपाउंडर पैदा नहीं कर सके।
तुम त्रिवेदी को कंसल्ट करो।
अरे हाँ, त्रिवेदी का क्या हाल है?
हाल क्या,
वही फैमिली प्लानिंग,
दो या तीन
बस।
और उसके अपने बच्चे?
अपने बच्चे
दो और तीन, यानी कि पांच। बस
पांच?
अरे हाँ, अनंत इनसे मिलो, ये डॉक्टर भास्कर बनर्जी।
अरे बाबू मोशाय, लड़कियां कॉलेज में आपको बाबू मोशाय बुलाया करती थी ना।
त्रिवेदी ने मुझे सब कुछ बता दिया।
सुना है बहुत लड़कियां मरा करती थी आप पर,
अब क्या हाल है?
लेकिन आनंद, तुम तो कल आने वाले थे।
अरे अपना तो हर काम ऐसे ही होता है दोस्त। जब मैं पैदा होने वाला था तो डॉक्टर ने कहा कि 21 अक्टूबर को पैदा होगा। मैं 20 को आटप का। अगर आप किसी डॉक्टर ने मेरे मरने की तारीख लिख दी तो देख लेना, मैं उससे पहले खिसक जाऊंगा।
हे बाबू मोशाय, क्या मिला? वो मैं त्रिवेदी को लिख दूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं।
कमाल है, मेरी चीज और मैं फिक्र नहीं करूं।
क्या जानना चाहते हैं आप?
कम से कम बीमारी का नाम तो बता दीजिए।
बीमारी का नाम जानकर क्या मिलेगा आपको?
मिले ना मिले बताना जरूर पड़ेगा।
अगर मैं कहूं कि आपको लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन हुआ है तो आप क्या समझेंगे?
क्या 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 क्या, फिर से कहिए।
लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
वाह वाह, क्या बात है, क्या नाम है, ऐसे लगता है जैसे किसी वाइस रॉय का नाम। बीमारी हो तो ऐसी हो, मैं तो नहीं हूं। यू आर अ ग्रेट डॉक्टर बाबू मोशाय, वाह वाह क्या नाम है, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। आदमी विविध भारती पर अनाउंस कर सकता। कसम से दोस्त, अगर ये बीमारी किसी औरत को होती ना तो ऐसे लगता जैसे उसने किसी अंग्रेज को गोद ले लिया।
ये मजाक और मस्करीपन की बात नहीं। Do you know the meaning of lymphosarcoma? आप जानते हैं ये किस बीमारी का नाम है?
मेरे पेट में भयानक किस्म का ट्यूमर है जिसकी वजह से मैं 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। शायद उसी का डॉक्टरी नाम होगा। आप अचानक नाराज क्यों हो गए? ओ समझा, आप मुझ पर नहीं अपने आप पर नाराज हैं, क्योंकि मेरा इलाज नहीं हो सकता ना, इसलिए।
ए बाबू मशाय, ऐ तो भालो भाषा भालो ना है, इतना प्यार अच्छा नहीं। बाबू मशाय, मैं आपको चेक कर सकता हूँ?
मुझे क्या हुआ
भाई, अपना हाथ तो दीजिए।
नब्ज इधर।
नो चांस। आपकी उम्र क्या?
30।
30। 100 में से 30 गए कितने रह गए दोस्त?
70।
आपकी जिंदगी 70 साल से ज्यादा नहीं। आपको मालूम आपकी बीमारी क्या है? आपकी बॉडी, जिस्म, शरीर, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा।
आप कहना क्या चाहते हैं?
यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत तो एक पल है बाबू मशाय, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाला उसका क्या होगा? बाबू मशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो, मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? बाबू मशाय, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का?
डॉक्टर कुलकर्णी आनंद के रहने का इंतजाम अपने नर्सिंग होम में करते हैं, पर वो वहां से भागकर डॉक्टर बैनर्जी के घर रहने चला जाता है। तभी डॉक्टर कुलकर्णी और उनकी पत्नी सुमन वहां अपनी शादी की सालगिरह का न्योता देने आते हैं।
हां प्रकाश, आइए रवि, अचानक कैसे आ गए?
अरे आनंद, तुम यहां कैसे?
मैं
मेरा कसूर नहीं है दोस्त, ये बाबू मशाय ना मुझे जबरदस्ती खींच के ले आया। मैंने बहुत कहा, मैंने कहा नहीं नहीं दोस्त नाराज हो जाएगा, बोला नहीं नहीं मैं कुलकर्णी को समझा दूंगा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। छोड़ो दोस्त, इसे कुछ मत कहना, बेचारा अकेला है ना।
समझ गया। इनसे तुम मिलो, ये है सुमन मेरी।
अरे भाभी आप, नमस्ते नमस्ते। अरे माफ करना भाभी, मैंने आपको देखा नहीं, हद हो गई ना, आपका परिचय मुझसे करवा रहा। दरअसल दिल्ली से मैं आप ही को मिलने आया हूँ। हाँ बहुत जरूरी काम आपसे।
क्या
जरा वो गाना सुना दीजिए ना एक बार, जो शादी से पहले चिड़ियाघर में लंगूर वाले पिंजरे के पीछे बैठकर आपने मेरे दोस्त को सुनाया था। क्यों दोस्त? वाह वाह वाह, क्या लोकेशन थी गाने की, क्या समा था।
अरे तुम्हें किसने बताया?
जसं काही तुम्हाला माहितीच नाही, तुम्हीच सांगितलं असणार।
पण
तुमचं हे वागणं मला बिलकुल पसंद नाही, सगळ्यांच्या समोर मला लाज वाटतं।
खरंच मी नाही सांगितलं?
नाही 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 भाभी, इसने कुछ नहीं बताया, ये तो ज्योतिष विद्या की बात है, मुख को देखकर मन की पुस्तक पढ़ लेते हैं। अच्छा, शादी से कुछ दिन पहले आपके पिताजी ने आपकी खूब पिटाई की थी ना?
नहीं, कभी नहीं।
देखिए देखिए, झूठ मत बोलिए, सच्चाई से शर्माइए मत। आपको याद है कॉलेज से भागकर आप मेट्रो सिनेमा में पिक्चर देखा करते थे, और उसके सामने किटकैट रेस्टोरेंट में दोस्त के साथ बैठकर खाना खाया करते थे, और वहीं पर एक दिन आपके पिताजी ने आपको देख लिया था, और शाम को घर जाते ही वही धूमधाम वाह 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 हुई थी कि नहीं हुई थी?
आता म्हणा ना, तुम्ही सांगितलं नाही म्हणून।
आता म्हणा ना। त्रिवेदी ने कहा होगा।
बाय द वे आनंद, परसों हमारी शादी की सालगिरह है, भास्कर के साथ तुम भी जरूर आना।
हाँ जरूर आऊंगा। अच्छा भाभी ये तो बताइए, आपको कौन से फूल अच्छे लगते हैं? पूरा 2.5 मन का बुके लेकर आऊंगा।
ए तो मत आना।
क्यों?
हम प्रेजेंट वगैरह नहीं लेते।
तो क्या कैश लेते हो?
देखिए हम पार्टी वार्टी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप दोनों को बुला रहे हैं, इसलिए कोई तकल्लुफ मत कीजिए।
वेरी गुड,
लेकिन एक शर्त पर।
क्या?
आपको अभी एक गाना सुनाना पड़ेगा।
हा?
मुझे मालूम है आप बहुत अच्छा गाते हैं।
आपको कैसे मालूम है?
वही ज्योतिष विद्या,
जो मुख को देखकर मन की पुस्तक पढ़ लेते हैं।
हाँ
गाना, ये ऑर्गन तो पड़ा पड़ा सुर भूल गया होगा।
ठीक है बाबू मशाय, खाने और गाने में कोई नखरा नहीं करता। चलो उठो उठो, सीट खाली करो।
मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों पे साए चुराए रसीली यादों ने, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने।
गलती से सुमन को पता लग जाता है कि आनंद को कोई बीमारी है। सुमन आनंद से इतना घुल मिल जाती है कि वो उसे अपना भाई बना लेती है। आनंद की बीमारी के बारे में जानने का काफी प्रयास करती है।
आनंद बालकनी में खड़ा रहता है। शाम का वक्त है और पता नहीं उसे किसी की याद आ रही है। उसकी जिंदगी में कोई था और वो उसे याद करते हुए कुछ गाना गाता है। डॉक्टर भास्कर बनर्जी दूर से उसे गाते हुए सुनते हैं।
कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए।
एक दिन डॉक्टर बनर्जी कुलकर्णी से मिलने आते हैं और तभी बताते हैं कि आनंद की तबीयत और ज्यादा बिगड़ चुकी है और कुछ ही दिनों में उसका चलना फिरना भी बंद होने वाला है। तभी सुमन को भी आनंद की बीमारी के बारे में पता लगता है। आनंद के जीवन में एक और अहम इंसान है, मुरारी लाल। दरअसल ये एक काल्पनिक चरित्र है जिसे वो हर आते जाते लोगों में ढूंढने की कोशिश करता है। डॉक्टर भास्कर अकेले रहता है और उनके घर में उनके साथ सिर्फ उनका नौकर ही रहता है, जो डॉक्टर भास्कर की शादी को लेके बहुत चिंतित है। वो अपने मन की बात आनंद से कहते हैं। आनंद एक दिन मौका पाकर भास्कर से पूछ ही लेता है कि वो किस लड़की से प्यार है।
बड़े सिर रुस्तम निकले यार, और मेरा मतलब छुपे रुस्तम बाबूशाह। अगर ये वेणी ना ली होती तुम तो मेरी भाभी को भी हजम कर गए होते। बताओ कौन है, कहाँ रहती?
अरे किसकी बातें कर रहे हो? मैंने सोचा तुमने सुमन भाभी के लिए वेणी ली।
बस कर और टालने की कोशिश मत कर। साफ साफ बताओ कौन है और कहाँ रहती।
भाई कौन कहाँ?
जिस लड़की से तुम्हारी कंटिन्यूटी है।
कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी क्या?
अरे वही जिसे हिंदी में अमिश कहते हैं और बंगाली में बालूबाशी।
मेरा कोई इश्विश नहीं।
बोल बिश्ना। भाई और बहनों, आज के जमाने में ऐसे भी नौजवान हैं, ऐसे भी लोग हैं जो इश्क के बारे में।
आनंद ये क्या हो रहा है?
फिर बताओ।
कहा ना कुछ नहीं।
फिर झूठ। भाई और बहनों,
आनंद तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो।
ब्लैक या व्हाइट, मेल या फीमेल, बताना पड़ेगा।
क्या बताना पड़ेगा?
कौन है वो? कोई तो होगी जिसे देखकर दिल धड़का होगा। ए बाबूशाह, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि कोई है। ए बाबूशाह बताओ ना, ए भाई बताओ ना, तुम्हें तो मालूम है कि मैं
एक पेशेंट थी मेरी, निमोनिया हुआ था उसे, उसका इलाज करते हुए उसे।
समझ गया। नाम क्या?
रेनू।
कहाँ रहती?
यही स्कूल में पढ़ाती।
पपीली?
क्या
पपी? पपी चुमा चुमा किस?
पाजी।
अरे लो, इसमें शर्मा नहीं, क्या बात है?
आनंद डोंट बी सिली।
अरे लो, अजीब बंगाली प्यार है।
एक दिन सुबह सुबह डॉक्टर भास्कर बनर्जी के घर की घंटी बजती है। जब दरवाजा खुलता है तो आनंद देखता है वहाँ एक लड़की है। वो उनसे पूछता है कि वो कौन है, तो वो कहती है कि वो रेनू है। आनंद समझ जाता है ये वही रेनू है जिसे भास्कर बहुत पसंद करता है, और वो उन्हें अंदर लेके आता है और उन्हें भाभी कहता है। भास्कर बहुत गुस्सा हो जाता है। तब आनंद कहता है कि जिसे प्यार किया उसे कहने में शर्माना क्या। हालांकि भास्कर और रेनू के बीच में एक प्यार हो चुका है ऐसा स्क्रीन पर नजर आता है, मगर वो दोनों एक दूसरे से शर्माते हैं और एक दूसरे को कह नहीं पाते। यहाँ आनंद उन दोनों को मिलवाने की कोशिश करता है। वो दोनों बाहर जाना चाहते हैं। जानबूझकर आनंद कहता है कि वो भी जाना चाहता है, मगर जब वो बाहर निकलते हैं तो उन दोनों को अकेला छोड़ के बच्चों के साथ खेलने लगता है, हाथों में गुब्बारे लेकर। मगर उस खुशी के बीच उसे कुछ याद आता है। उसे अपने जिंदगी के कुछ लम्हे याद आते हैं।
जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
डॉक्टर बैनर्जी से रेनू आनंद के बारे में पूछती है कि वो कौन है, किस लिए आया है, कहां से आया है। डॉक्टर बैनर्जी कहते हैं कि आनंद एक मरीज है, वो सिर्फ 2 से 3 महीने तक ही जी पाए, वो दिल्ली से आया है। डॉक्टर बैनर्जी हैरान होते हैं कि आनंद के रिश्तेदार उसके बिना कैसे रहते हैं। तभी डॉक्टर कुलकर्णी बताते हैं कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, आनंद यतीम है। ये सारी बातें उसने सुमन से कही हैं। आनंद रेणु के घर उसकी माँ के पास भास्कर का रिश्ता लेकर जाता है। रास्ते में कुछ लड़के बैठे रहते हैं जिनसे आनंद रेणु के घर का पता पूछता है। उन लड़कों को ऐसा लगता है जैसे आनंद भी शायद रेणु का प्रेमी है और वो उनसे कहते हैं कि उससे दूर रहे।
आनंद जब रेणु के घर से निकलता है तो वो मनचले लड़के उसे फिर से पकड़ते हैं और पूछते हैं कि हमारा नंबर पहला था, और उसे धमकाते हैं कि आज के बाद खबरदार यहाँ मत आना। आनंद पास ही के एक अखाड़े में जाता है और वहाँ जो पहलवान है वो उनसे जाकर विनती करता है कि इस तरह से कुछ लड़के मुझे परेशान कर रहे हैं। वो पहलवान आकर के उन लड़कों की बहुत धुलाई करता है।
रेणु की माँ खुश हो जाती है जब आनंद उन्हें ये कहता है कि डॉक्टर बैनर्जी और रेणु एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। आनंद सुमन से मिलने उनके घर आता है और डॉक्टर बैनर्जी और रेणु के रिश्ते की खुशखबरी सुनाता है। बात करते करते सुमन रो पड़ती है और आनंद को पता चल जाता है कि सुमन आनंद की बीमारी के बारे में जान चुकी है। रेणु आनंद से मिलने आती है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि आनंद को एक और मुरारी लाल जी दिखते हैं और वो फिर शुरू हो जाता है। पर किस्मत से ये भी आनंद की ही तरह खुश मिजाज इंसान निकलते हैं जो आनंद से बिल्कुल वैसे ही घुल मिल जाते हैं जैसे बरसों की पुरानी दोस्ती हो।
ए मुरारी लाल, ओए मुरारी लाल, यहाँ का ये क्या दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली शाहजहान की तरह, पहचाना नहीं? भूल गए बच्चू, कुतुब मीनार पर बियर पिलाकर आउट कर दिया था।
अरे जयचंद, तुम हद हो गई यार, 2 पैक में दिल्ली छोड़ गए।
2 थोड़ी यार, 4 थे।
लगी शर्त भैया, पैक तो 2 ही थे लेकिन डबल। चलो एक डबल हो जाए।
नहीं यार, मैंने पीना छोड़ दिया। तुमने?
नहीं मियां, छुट्टी कहाँ है ये काफिर मुंह से लगी हुई।
ए बाबूशाह, रे इधर आ, इधर इधर। अच्छा यार ये तो बताओ, शादी वादी की या छड़े के छड़े हो?
नहीं मियां, जो लड़की मैं पसंद करता हूँ उसे अब्बा कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं छोटी है, और जो लड़की अब्बा लेकर आते हैं मैं उसे कैंसिल कर देता हूँ, लगता है बड़ी है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ, वो तो मीडियम साइज की थी।
क्या है ना बाबू शाह, मैं तुमसे कहा था ना एक दिन हमारा मुरारी लाल जरूर मिल जाएगा। मिल गया मुरारी लाल, ये है डॉक्टर भास्कर बैनर्जी, मैं नहीं क्या रहता हूँ।
नमस्ते, मैं और जयचंद बचपन में एक ही साथ पढ़ा करते थे, जब से ये इतना शैतान है कि मत पूछिए।
इनका नाम जयचंद नहीं आनंद है।
तो मेरा नाम भी मुरारी लाल नहीं, ईसा भाई है, ईसा भाई सूरत वाला, याद रखिए। आपका नाम तो भास्कर ही है ना?
हाँ।
अरे गुरुदेव कहाँ चले, मुझे तुम्हारी तलाश थी। मान गए गुरु, इसी बात पे एक पहला चाय हो जाए।
नहीं चले, मुझे रिहर्सल पे जाना है।
रिहर्सल?
हाँ, अपनी नाटक कंपनी है।
ड्रामा करते हो? हाँ। तो गुरुदेव मुझे एक रोल दे दीजिए, थोड़ी बहुत एक्टिंग मैं भी कर सकता हूँ।
एक्टिंग का नमूना तो मैंने देख ही लिया है। फिर भी चलो,
ए बाबू शाह तुम भाभी का ख्याल रखना, मैं तेरे गुरु की कंपनी से होकर आता हूँ। चलिए गुरुदेव।
चलो चलिए।
हम समझ गए अब्बाहू।
शेखू।
अब्बाहू।
हम शर्मिंदा हैं कि हमने तुम्हारे ऐसे बेटे को जन्म दिया।
अपनी गलती पर शर्मिंदा होना हर आदमी का फर्ज है।
खामोश बदतमीज, हम तुझे जिंदा गाड़ देंगे।
लगी शर्त, अगर आप गाड़ेंगे तो जिंदा नहीं रख सकेंगे अब्बा हुजूर।
तू पैदा होते क्यों ना मर गया?
जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहाँ पना, उसे ना आप बदल सकते हैं और ना मैं। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा कोई नहीं बता सकता।
वाह गुरु वाह, क्या बात है, क्या बात है गुरु, वाह मान गए।
जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना।
आनंद की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि वो अब बिस्तर से उठ भी नहीं पाता है। उसे देखने के लिए सब आते हैं। सब आनंद के लिए प्रार्थना करते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और आनंद ठीक हो जाए। भास्कर अपने कमरे में अकेले बैठा रहता है और तभी आनंद उसे अपने साथ लेके जाता है और भास्कर की कविता मौत एक कविता है को रिकॉर्ड करता है।
आज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़।
इस मुश्किल में अगर अकेला छोड़ दिया तो और मुश्किल हो जाएगी। चलो चलो उस कमरे में चलते हैं, तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करते हैं। वो जो कविता है ना
आनंद, प्लीज जाओ अपने कमरे में जाओ।
कमरे में जाऊंगा लेकिन तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा।
मैंने कहा ना मैं अकेला रहना चाहता हूँ।
मैंने कहा ना कि मैं नहीं चाहता तुम अकेले रहो।
आनंद क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम? क्यों एक्सपेक्ट करते हो जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा? तुम हंसो तो मैं हंसता रहूं, तुम बोलो तो मैं बोलता रहूं, बकबक करता रहूं तुम्हारे साथ।
कितनी बार और कितनी बार मुझे याद दिलाते रहोगे कि मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरा आखिर आ गया है। बाबू मोशाय, आज तक किसी ने अपनी मौत नहीं देखी, लेकिन मैं वो अभागा हूँ जो हर रोज हर पल हर लम्हा अपनी मौत देख रहा है तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में। नहीं बाबू मोशाय, नहीं, मैं अपनी मौत देख सकता हूँ लेकिन तुम्हारा ये डरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता। मैं चला जाऊंगा, कल ही यहां से चला जाऊंगा।
नहीं आनंद, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारा तो कोई नहीं है, तुम मरोगे तो यहां मेरी बाहों में।
अरे वाह, ये हुई ना मर्दों वाली बात। बाबू मशाय, हमारी मुश्किल मालूम क्या है? हम आने वाले गम को खींच तान कर आज की खुशी पे ले आते हैं और उस खुशी में जहर घोल देते हैं। बाबू मशाय, मैं आज थोड़ी मरने वाला हूं, और अगर मर भी गया तो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, यही रहूंगा यहां तुम्हारे साथ।
हाँ आनंद, मैं जानता हूं तुम मेरा हिस्सा होगे, मेरे जीने का हिस्सा। बस एक ही चीज नहीं रहेगी मेरे पास।
क्या?
तुम्हारी आवाज, तुम्हारी ये पक-पक।
तो फिर पक-पक रिकॉर्ड कर लो, लेकिन हाँ सबसे पहले तुम्हारी ये कविता रिकॉर्ड करें।
कौन सी?
वही जो तुमने कॉलेज में लिखी थी, जिसमें तुमने कहा था ओ मौत तुम्हें कविता हो। चलो 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 चलो।
मौत तू एक कविता है,
मुझसे कविता का वादा है मिलेगी मुझको, डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे, दिन अभी पानी में हो रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है मिलेगी मुझको। अब तुम बोलो।
क्या?
कुछ भी, तुम्हें भी बोलना पड़ेगा बोलने के लिए।
हाँ वो तो है
बाबू मशाय।
बाबू मशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी हैं। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है।
मुरारीलाल आनंद से मिलने उसके घर आता है। वो उसे अपने रिहर्सल्स पर ले जाना चाहता है, मगर जब वो घर के अंदर आता है तब वहाँ देखता है डॉक्टर भास्कर बनर्जी खड़े हैं और रामू काका उनसे इजाजत मांग रहे हैं, वो कहीं जा रहे हैं। रामू काका से मुरारीलाल पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। रामू काका कहते हैं कि उन्हें एक मंदिर के बारे में मालूम है जहाँ जाकर के अगर दुआ मांगी जाए तो किसी की जान बचाई जा सकती है। मुरारीलाल की हर बात में शर्त लगाने की आदत है और वो उनसे शर्त लगाते हैं कि किसी से मुराद मांगने से किसी की जान बच नहीं सकती। थोड़ी ही देर बाद जब उन्हें पता चलता है कि वो आनंद के लिए मुराद मांगने जा रहा है और आनंद की हालत बहुत खराब है, तो मुरारीलाल बस यही कहता है कि मैंने आज तक जिंदगी में सारे शर्त जीते हैं, मगर आज कि अगर मैं हार जाऊं तो बहुत अच्छा हो। दिन पर दिन आनंद की हालत बहुत खराब होती जाती है। डॉक्टर भास्कर बनर्जी बहुत परेशान है।
बस गिने गिनाए कुछ पन्ने बाकी हैं आनंद की जिंदगी के, उसके गिने गिनाए कुछ दिनों की तरह। हम सब डरे सहमे उसी का इंतजार कर रहे हैं। कब? कब? किस वक्त?
आनंद बिस्तर पे लेटा हुआ है, रेनू उसके पास खड़ी है, वो भी रो रही है। डॉक्टर भास्कर बनर्जी को लगता है कि इसकी हालत बहुत खराब हो गई है और वो कहता है कि मैं जाके डॉक्टर को बुला के लेकर आता हूँ, मगर आनंद कहता है कि ना।
आनंद ऑक्सीजन ले लो, आराम मिलेगा।
खिड़कियां खोल दो, सब खिड़कियां खोल दो।
प्रकाश, मैं डॉक्टर शास्त्री के पास जा रहा हूँ। सुना है होम्योपैथी में कोई दवा है जो लग जाए तो मिरेकल कर सकती है।
आनंद मन, क्या तू जानता नहीं कि आप कुछ नहीं हो सकता?
क्यों नहीं हो सकता? तुझे कैसे मालूम कुछ नहीं हो सकता? क्या इससे पहले कभी कोई मिरेकल नहीं हुआ?
बहु मुशाय।
आनंद, मैं अभी आया।
कहीं मर जाओ बहु मुशाय, इस वक्त कहीं मर जाओ बहु मुशाय।
तू घबरा नहीं, तू घबरा नहीं, मैं गया हो रहा है।
भास्कर बाहर चला जाता है। आनंद भास्कर का इंतजार करता है। उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। वो भास्कर को हर पल याद करता है, उसके आने का इंतजार करता है। तभी वो रेनू से कहता है,
रेनू जी, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए, बड़ा कमजोर है वो, मेरी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
अनंत,
बड़ा कमजोर है वो, मेरी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
अनंत,
बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
अनंत भैया, अनंत
बाबू मुझे नहीं आए।
अभी आ जाएंगी, अभी आ जाएंगे।
बाबू मशाय अभी तक नहीं आए। बाबू मशाय, दोस्त,
हाँ आनंद,
दोस्त, टेप चला दो, जल्दी जल्दी मेरे दोस्त,
टेप चला दो
सिस्टर।
मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे, दिन न भी पानी में हो रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म
हो।
डॉक्टर भास्कर बनर्जी दौड़ते हुए रूम के अंदर आते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी है, आनंद जा चुका है। भास्कर बनर्जी को ये सहन नहीं होता, वो ये मान ही नहीं सकता कि आनंद उसके जीवन से जा सकता है। वो चिल्लाता है,
छह महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं, बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम, बोलो बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे।
तभी अचानक से पीछे से एक आवाज आती है, बाबू मोशाय। तभी उसकी निगाह उस टेप रिकॉर्डर पर जाती है जहां से आनंद की आवाज आ रही होती है।
बाबू मोशाय, बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पर आप उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है, कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं।